আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাও ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ হামারি ইস রুহানি তরবিয়তি নশিস্ত কা উনওয়ান হ্যায় শজরে কি জরুরত ও আহমিয়ত। আপ জানতে হ্যাঁ কি জব কোই ইনসান কিসি শেখকে হাত পর বেত হতা হ্যায় তো এক আম তরিকা হ্যায় কি উসে এক কিতাব দি জাতি হ্যায়, উসকো শজরা কাহা জাতা হ্যায়। সবসে পহলে উসকে অন্দর বুজুর্গানে দীন কে নাম হতে হ্যায়, উসকে বাদ জিকর কি তালিম হতি হ্যায়, উসকে বাদ আদাব তরিকত উসমে মুখতসর আন্দাজ মে বয়ান কিয়ে জাতে হ্যায়, আর দিগর খাস খাস ঔরাদ ও ওয়াজাইফ জো মুখতসর হতে হ্যায় ও বয়ান কিয়ে জাতে হ্যায়। ইয়ানি কি হর নামাজ কে বাদ এক তসবিহ উসমে হতি হ্যায় আর জিয়াদা উসমে তফসীল ইয়া কসীর তাদাদ মে কিসি ওয়াজিফে কো পড়না ইয়ে চিজ উসমে নাই হতি। আমতৌর পে ইয়ে সওয়াল হতা হ্যায় কি ইয়ে কিউ দিয়া জাতা হ্যায়, ইসকা মকসদ ক্যা হ্যায়। মেরে ওয়ালিদে গ্রামী আশরফুল মশায়েখ হযরত আবু মুহাম্মদ শাহ সৈয়দ আহমদ আশরফ আশরফি আল জিলানী নব্বরাল্লাহু মরকাজাহু, উনসে কিসি নে সওয়াল কিয়া তো আপনে মকতুবাত মে উসকা জবাব দিয়া। আপকে মকতুবাত মাহনামা আল আশরফ মে মকতুবাত আশরফুল মশায়েখ কে নাম সে হর মহিনে শায় হো রহে হ্যায়। আপনে জবাব দিয়া আর ফরমায়া কি ইয়ে জো নামো কি ফেহরিস্ত হ্যায় মহজ উস্তাদ আর শাগির্দ কি ফেহরিস্ত নই হ্যায় কি উসনে উনসে পড়া উনোনে উনসে পড়া উনোনে উনসে আর হতে হতে ইয়ে সিলসিলা আগে তক পৌঁছা এসা হরগিজ নই হ্যায়। সির্ফ উস্তাদ আর শাগির্দ কি ফেহরিস্ত কে দেনা জেসা কি আমতৌর পে লোক কে দেতে হ্যায় কি ইসমে ক্যা জরুরত হ্যায় আর ইসকা ক্যা ফায়দা হ্যায় ইসকো রাখনে কা ইসকো পড়নে কা। দেখিয়ে পহলি চিজ তো ইয়ে হ্যায় কে আল্লাহ তবারক ও তাআলা নে ইন বুজুর্গান দীন আউলিয়া কামিলিন কে নামো মে ভি আসর রাখা হ্যায়। জহাঁ তক উস পুরি ফেহরিস্ত কা তাল্লুক হ্যায় উসকো দেনে কা এক মকসদ তো ইয়ে হ্যায় কি জো তালিব সাদিক হ্যায় ও ইয়ে সমঝ যায় কি মানে জিস শেখ কে হাত মে হাত দিয়া হ্যায় উসকা ইয়ে সিলসিলা তরিকত কহাঁ তক পৌঁছতা হ্যায়। ইয়ানি উসকো ইয়ে পতা হ্যায় কি ইয়ে মেরা পীর হ্যায় ফির দাদা পীর হ্যায় ফির উসকে বাদ হ্যায় উসকে বাদ হতে হতে নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তক সিলসিলা পৌঁছ গয়া। ইয়ানি কড়ি সে কড়ি মিলি হুই হ্যায়, দরমিয়ান মে কোই ইনকিতা নাহি হ্যায়। আলহামদুলিল্লাহ হামারে খানদান মে শজরা নসব ভি হ্যায় আর শজরা তরিকত ভি হ্যায়, আর ইয়ে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কা করম হ্যায় কি নসবি লিহাজ সে ভি আর তরিকত কে লিহাজ সে ভি কহিন কোই ইনকিতা নাই হ্যায়, কড়ি সে কড়ি জুড়ি হুই হ্যায় জো পৌঁছতি হ্যায় নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তক। আর মুরিদ হোনে কা মকসদ ভি ইয়েহি হ্যায় কি ইনসান ইলম হাসিল করে রুহানি ইলম কি জি বেত হোনে কি জরুরত ক্যা হ্যায়, জিস তরহ কিসি ভি ইলম কো হাসিল করনে কে লিয়ে উস্তাদ কি জরুরত হতি হ্যায় ইসি তরহ ইলম রুহানিয়ত তরিকত ইসকা হুসূল ইয়ে তমাম চিজে করনে কে লিয়ে ভি এক উস্তাদ কি জরুরত হতি হ্যায় জিসে শেখ কাহা জাতা হ্যায়। আপ উসে শেখ তরিকত কহেন উসে পীর ও মুর্শিদ কহেন জো ভি আপ কহেন তো ও আপকি রহনুমাই করতা হ্যায়। কিসি নে বড়ি প্যারি বাত কহি কি শরিয়ত কা ইলম জবান সে হাসিল হতা হ্যায়, তরিকত কা ইলম নজর সে হাসিল হতা হ্যায়, হকীকত কা ইলম কলব সে হাসিল হতা হ্যায়, মারিফত কা ইলম রূহ সে হাসিল হতা হ্যায়, লেকিন ইয়ে তমাম চিজে শেখ কে জরিয়ে হি হাসিল হতি। জাহিরি উলুম আপ জিতনে ভি দেখ লেন আপ হাসিল কর লেন তো উনকা তাল্লুক জবান সে হ্যায়, লেকিন ইন উলুম কা তাল্লুক ইলমে তরিকত কা তাল্লুক ইয়ে নজর সে হ্যায়, ইলমে হকীকত কা তাল্লুক কলব সে হ্যায়, আর মারিফত কা জো ইলম হ্যায় উসকা তাল্লুক রূহ সে হ্যায়। আচ্ছা ইয়ে হাসিল করনে কে লিয়ে হাম কিসি কে হাত পর বেত হুয়ে, আব জো বেত হতা হ্যায় উসকে লিয়ে পহলা দরজা ক্যা হ্যায়। জব ইনসান কিসি স্কুল মে কিসি মদরসে মে কিসি কলেজ মে ইয়া ইউনিভার্সিটি মে দাখলা লেতা হ্যায় সবসে পহলে ফারম ভরা জাতা হ্যায় फिर उसकी फीस जमा की जाती है, फिर दाखिला होता है, फिर उसको सिलेबस दिया जाता है, ये आपका कोर्स है, ये पढ़ना है, ये किताबें हैं, ये चीज़ है और ये टाइमिंग है, ठीक है। लेकिन खानकाह का निज़ाम ही अलग। बैत होने के बाद शजरा जो दिया जाता है वो तो हर एक को दिया जाता है। आप किसी भी सिलसिले में आप बैत हों, चार सिलसिले बड़े, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरावर्दिया, और बाकी सलासिल जो हैं वो इन्हीं की शाखें हैं, असल ये चार हैं। अब इनमें से किसी भी सिलसिले से आप बैत हों, किसी भी शेख तरीक़त के हाथ पर बैत हों, तो बैत होने के बाद एक छोटी सी किताब आपको दी जाएगी, वो शजरा है। उसकी अहमियत क्या है? उसकी अहमियत ये है कि एक तो इंसान को पता चल गया कि मेरा जो सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। ये पूरी एक कड़ी से कड़ी जो मिली है, जंजीर है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुँच रही। दूसरी बात ये कि बुज़ुर्गान दीन के नाम, अब उसमें ये हिदायत की जाती है कि आप रोज़ाना इशा के बाद इस शजरे को पढ़ें। उसमें नाम भी होते हैं और मंजूम यानी अशार की सूरत में वो शजरा होता है। पहले शेर में इस्तेगासा होता है, दूसरे शेर में नाम होता है, यानी उन्हीं के नामों को वसीला बनाकर दुआ की जाती है, मुख्तलिफ अंदाज में, अपने इल्म में इजाफे के लिए, तरीक़त पे चलने के लिए, शरीयत पर अमल करने के लिए, दीगर चीज़ें, तो हर हर शेर में इसी तरह की होती है। अब उससे फ़ायदा क्या है? मेरे वालिद गिरामी हज़रत अशरफुल मशाइख नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्गान दीन को ऐसी रूहानी क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई है कि जिस बुज़ुर्ग का नाम लोगे उसकी रूहानियत उसी वक्त मुतवज्जे हो जाएगी, यानी वो जिंदा जावेद हस्तियाँ हैं। उनको विसाल को एक साल हो जाए या 100 साल हो जाए या 1000 साल हो जाए, लेकिन उनकी कैफियत क्या है? जो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन हैं, अंबिया हों, औलिया हों, बुज़ुर्गान दीन हों, कोई भी हो, अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत अता फरमाई है कि जब आप उनका नाम लेंगे उनकी रूहानियत उसी वक्त मुतवज्जे हो जाएगी। और बाद बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन अपने अपने दर्जे के हिसाब से तसर्रुफ करते हैं। शेख महक्किक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नंबर अल्लाह मरकज़हू अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में फरमाते हैं कि चार मशाइख ऐसे हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। जैसे जिंदा आदमी होता है ना, वो उनकी तरह तसर्रुफ करते हैं। फरमाते हैं हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अकील मुंजी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हया बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल क़ादर जीलानी हसन या लुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं चार मशाइख हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ करते। अब इसी तरह मशाइख की एक कसीर तादाद, एक लंबी फहरिस्त है, तो जिसका जैसा मकाम, जैसा मरतबा, वह उसी लिहाज से तसर्रुफ करता है। तो अब जो शजरा हम पढ़ते हैं, तो जिस वक्त हम पढ़ेंगे, जिस बुज़ुर्ग का नाम लेंगे उसकी रूहानियत मुतवज्जे हो जाएगी, और उनका नाम लेकर उनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब इंसान पढ़ता है उनकी रूहानी तवज्जो होती है और वो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब हो जाता है। इसलिए जो तालिब सादिक है, राय सलूक तय करने वाले हैं, उनको वो शजरा दिया जाता है कि रोज़ाना वो उसको पढ़ें। उसके बाद औरादो वज़ाइफ होते हैं, यानी हर नमाज के बाद सिर्फ 100 मरतबा एक तस्बीह आप पढ़ लें। अब उसमें या करीम या अल्लाह हो, या जब्बार या अल्लाह हो, या सत्तार या अल्लाह हो, या गफ्फार या अल्लाह हो, मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ, ये तो हर एक के लिए है, यानी ये इब्तदाई निसाब सब के लिए यकसा है, कोई भी हो। ज़िक्र की तालीम, क्योंकि ज़िक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने इस पर तवज्जो दी, क़ुरान करीम में भी और अहादीस मुबारका में भी ज़िक्र की फजीलत आई है, इसीलिए इन बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने ज़िक्र को अपना मामूल बनाया। अब उसमें दो किस्में, ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र बिलजहर। कुछ सलासिल में ज़िक्र खफ़ी है, कुछ में ज़िक्र बिलजहर, जैसे नक्शबंदिया सिलसिले में ज़िक्र खफ़ी है और चिश्तिया में और दीगर में ज़िक्र बिलजहर है। सबके अपनी अपनी तालीमात हैं, लेकिन सबका मरकज़, सबका मंबा एक ही है, और ये सब पहुँचते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, اور وہاں سے خالق کائنات تک. مرکز سب کا ایک ہی ہے, منبع سب کا ایک ہی ہے, مقصد سب کا ایک ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تعلیمات سب کی جدا جدا ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے ایک نصاب ہے کالج کا, یونیورسٹی کا, دارالعلوم کا. آپ درس نظامی کے نصاب کو دیکھ لیں, 6 سالہ کورس ہے, کہیں 8 سالہ کورس ہے, کہیں 2 سالہ ہے, مختلف نصاب. لیکن خانقاہ میں کوئی نصاب نہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی طلب اور اس کی جستجو پر موقوف ہے کہ وہ کتنے عرصے میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. جس کو جیسا شوق, جیسی لگن, اور جس کا دل جتنا صاف اتنا ہی وہ کامیاب. اب ایک آدمی ہے, وہ ظاہری طور پر آتا ہے کہ میں یہ پڑھ لوں تو مجھے یہ حاصل ہو جائے, میں یہ وظیفہ پڑھ لوں تو کاروبار میں ترقی ہو جائے, میں یہ پڑھ لوں تو فلاں کام ہو جائے. اور ایک وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے. کوئی وہ ہے کہ جو برسوں خانقاہ میں رہا اور کچھ حاصل نہیں کر سکا, یا اگر حاصل بھی کیا تو بہت معمولی. اور کوئی وہ ہے کہ ایک دن میں آیا اور سب کچھ حاصل کر کے چلا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ داخل ہوئے تو آپ کو 6 سالہ کورس کرنا ہے, آپ کو 8 سالہ کورس کرنا ہے, آپ کو 2 سالہ کورس کرنا ہے. آپ کی نیت پر, آپ کے دل پر, آپ کی عقیدت پر یہ بات موقوف ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے, آپ کی عقیدت سچی ہے, آپ کے دل میں خلوص ہے, تو آپ سب کچھ حاصل کر لیں. آپ تصور سے ہی حاصل کر لیں گے, تصور شیخ قائم کریں, اسی سے آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر برسوں بھی آپ رہیں وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں, یعنی راہ طریقت میں, سب سے پہلی چیز ہے خلوص, اخلاص. اخلاص جب ہوگا تو ریاکاری نہیں ہوگی, اور جب ریاکاری ہوگی تو اخلاص رخصت ہو جائے. تو اس میں پہلی چیز ہے اخلاص. آج کل اگر دیکھا جائے تو ریاکاری زیادہ ہے, دکھاوا زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے میں نے یہ وظیفہ پڑھا, وہ کہتے ہیں میں نے سورہ مزمل پڑھی, وہ کہتے ہیں میں نے دعائے ذوالبحر پڑھی, وہ کہتے ہیں میں نے فلاں چیز پڑھی, لوگوں کو بتانے کے لیے اور اپنے آپ کو ان کے اندر ممتاز کرنے کے لیے. حالانکہ بزرگان دین, اولیاء کاملین کا طریقہ یہی رہا کہ انہوں نے سب کچھ کیا اور پھر کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. سب کچھ تھے اور پھر کہا کہ ہم کچھ نہیں. سب کچھ دیکھا لیکن کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں میں اثر پیدا کر دیا, ان کی صحبت میں اثر پیدا کر دیا, کہ جو ان کی صحبت میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا. اسی لیے مولانا روم نے فرمایا تھا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت پیریا. اگر تم کسی دنیا دار کی صحبت میں 100 سال رہے, 100 سال تم نے گزارے, اور اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک ساتھ ایک لمحے رہے, تو وہ ایک لمحہ ان 100 سالوں پر بھاری ہے. اس ایک لمحے میں تم نے اس کی نظر سے, اس کی صحبت سے, اس کے فیض سے جو کچھ حاصل کر لیا وہ 100 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. ایک نظر پڑی, ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا. قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد سلطان الہند غریب نواز ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتے تھے, ہمیشہ. لیکن جب کوئی فاسق اور فاجر ان کے سامنے آتا, نگاہ اٹھا کر دیکھتے, نظر بھر کے دیکھتے, ظاہر کو بھی پاک کر دیتے, باطن کو بھی پاک کر دیتے, اس کے جسم کو, اس کے دل کو, قلب کو بھی ایک ہی نظر میں پاک کر دیتے. تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ایک نگاہ سے ہو جاتی. لیکن یہ سب کب ہوا؟ صحبت سے ہوا. انہوں نے پہلے اپنا تزکیہ نفس کیا اور اس کے بعد اللہ نے ایسی کرامت اور ایسی شان انہیں عطا فرمائی کہ جس پر نظر ڈال دی اس کا بھی تزکیہ ہو گیا, جو آ کر محفل میں بیٹھ گیا اسے بھی پاک کر دیا, جس پر توجہ دے دی اس کو بھی پاک کر دیا. تو اس لیے ان بزرگان دین, اولیاء کاملین کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا, ان کے ناموں میں اثر ہے. تو اب شجرہ شریف میں جو نام ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر نام آپ دیکھ لیں, جتنے اوپر آپ چلتے چلے جائیں گے ایک سے ایک چمکتے ہوئے, دھمکتے ہوئے نام نظر آ رہے ہیں. اور آج بھی ان کے یہ نام ہدایت کی روشنی پہنچا رہے ہیں. दिलों को पाक कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उनके नामों में इतना असर है तो उनकी ज़ात में कितना असर हो, उनके मज़ार मुबारक पर हाजिरी में कितना असर हो। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का करम है। उसके बाद क्या है कि शजरे में ज़िक्र की तालीम दी जाती है। हर तालिब पर, तालिब सादिक जो राय सलूक तय करना चाहता है या कर रहा है, उस पर लाजिम है कि वो ज़िक्र इलाही करे, ज़िक्र खफी या ज़िक्र बिलजहर, जो जो तरीक़ा ये उसके अंदर बयान किया जाता है, वज़ाइब बयान किए जाते हैं। अब उसके बाद की जो तालीम है वो जो जितना हाजिर बाश है वो उतने ही फैज लेकर जाएगी। हाजिरी की अहमियत हर जगह है। आप स्कूल में देख लें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदारिस में, खानकाह में, जहाँ भी आप देखें कि जहाँ से भी इल्म हासिल हो रहा है, यानी ज़ाहिरी इल्म देने वाले इदारे और बातनी इल्म देने वाली खानकाहें, हर जगह हाजिरी की अहमियत। जो हाजिर बाश हैं वो सब कुछ ले जाएगा और जो गैर हाजिर हैं वो कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी हाजिरी को मजबूत करें। और दूसरी बात उसमें ये बयान की जाती है कि इंसान जब खानकाह में हाजिर हो तो अपने आप को बाहर रख कर आए, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपना ओहदा, अपना मनसब, अपनी दौलत, अपना तकब्बुर, अपना गुरूर, जो कुछ है उसको बाहर रख कर आए और आजी इंकिसारी का पैकर बनकर फिर इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिर हो, तो एक नज़र में सब कुछ हासिल कर ले। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं मैं हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, तो फिर समझ लें वो कुछ नहीं जानता। तो शजरे की अहमियत इसीलिए है कि जब रोज़ाना हम शजरा पढ़ते हैं, हमारी नज़रों के सामने उन बुजुर्गान दीन के नाम आते हैं, उनकी तवज्जो हमारी तरफ होती है, उनकी रूहानियत मुतवज्जो होती है और हमारे अंदर, कल्ब के अंदर एक कैफ, एक सुरूर पैदा होता है। फिर जब जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें, बरकतें नाजिल होती हैं। फिर जब औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं तो जो जिस वजीफे का आमिल है, यानी अगर आप एक वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और वो चीज़ आपके अमल में आ गई, तो उस वजीफे के ताबे जितने मवक्कलात होंगे वो सब आपके साथ होंगे, वो आपकी हिफाजत भी करेंगे, वो आपके साथ भी रहेंगे और लोगों के शर से आपको बचाएंगे भी, आपकी हिफाजत भी करेंगे। ये तमाम चीज़ें शजरे में होती हैं। तो शजरे की अहमियत आपने समझ ली। इसलिए जो तालिबान राह सलूक हैं उन पर यह लाजिम है कि रोज़ाना एक मरतबा अपने सिलसिले का शजरा ज़रूर पढ़ें और उसमें यह ना समझें कि ये खुदा न खास्ता कोई एक बोझ सा है, ये एक पढ़ना है, इसको बस पढ़ के ख़त्म कर दे। नहीं, ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ें, उन बुज़ुर्गों के नाम लें तो अकीदत और मोहब्बत के साथ लें, जो अशार में हैं तो अकीदत और मोहब्बत के साथ, फिर आप देखेंगे उनकी कैसी निगाह करम हो, जो जो तालीमात उसमें हैं। मसलन उसमें आदाब तरीक़त है, अदब का तरीक़ा बताया गया, किस तरह शेख का अदब करना है, किस तरह बड़ों का अदब करना है। तसव्वुफ़ सरापा अदब ही अदब है। हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नब्बरल्लाहु मनक़दहु लताइफ़ अशरफ़ी में दीगर बुज़ुर्गों के अकवाल नकल करते हैं और फिर फरमाते हैं तसव्वुफ़ सरापा अदब ही अदब है। अगर जो तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करना चाहता है, तरीक़त की राह में कदम रखना चाहता है, पहली चीज़ अदब। अदब का करीना जिसने नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा, और जो सब कुछ सीख कर भी अदब हासिल ना कर सके, अदब ना कर सके, आप समझ लें कि वो सब कुछ गंवा बैठता। और एक आम आदमी है अगर बाअदब है और उसने कुछ हासिल नहीं किया है तो यही अदब उसे सब कुछ सिखा देगा, यही अदब उसे सब कुछ बता देगा, यही अदब उस पर बुजुर्गान दीन की निगाह करम से उसकी आखिरी मनाजिल जो हैं और आगे की मनाजिल तय करा दे। तो तरीक़त में अदब की अहमियत है, इसीलिए ये तमाम चीज़ें इसमें बयान की जाती। तो आपने समझ लिया कि मुरीद होने के बाद जो हमारे मशाइख तरीक़त शजरा शरीफ देते हैं उसकी वजह क्या है। तो हमें ये चाहिए कि हम इसको पाबंदी के साथ पढ़ें, उसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं, ज़िक्र की तालीम दी गई है, ज़िक्र करने की कोशिश करें, ज़िक्र बिलजहर करें, अगर ये मुमकिन ना हो तो ज़िक्र खफ़ी करें, हर नमाज के बाद अपनी गर्दन झुकाकर कल्ब की तरफ तवज्जो करके और कल्ब पर इसमें अल्लाह लिखा हुआ तसव्वुर करके अल्लाह 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 इसका विर्द करें और ज़रब लगाएं बिल्कुल खामोशी के साथ, दिल ही दिल में, यानी जो पास बैठा है उसको भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग ये समझें कि शायद ये सो रहा, लेकिन पता चले कि आपकी लौ अल्लाह से लगी हुई है, तार से तार मिला हुआ है, लिंक से लिंक मिला हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमतें उस जिक्र करने वाले पर नाजिल होती हैं, और अगर इसको मामूल बना लिया जाए तो फिर सुभान अल्लाह। तो हमें ये चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको मशाइख तरीक़त की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाएँ, और हम सबको उन्हीं के साथ उन्हीं के झंडे तले क़यामत में उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।